الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا وشفينا وسندنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا رب صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سلسلہ چل رہا ہے حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، ہمارے ذمہ کیا کیا ہے، اور اس میں سے بعض حقوق کا تذکرہ ہوا ہے. سب سے بڑا اور اہم حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، دل سے تصدیق، زبان سے اقرار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا، اور بلا کسی تأمل کے، دل کی تنگی کے، بلا کسی خفگی کے، بالکل انشراح صدر کے ساتھ، بالکل خوشی کے ساتھ سر تسلیم خم کہ آپ کی شریعت، آپ کی سنت افضل اور محبوب ترین چیز ہو، اور آپ کا دین پورے کا پورا، نہ اس میں سے کچھ نکالنا ہے، نہ اس میں کچھ نئی چیز داخل کرنی ہے، آپ کا دین پورے کا پورا، اس کو ہم سینے سے لگائیں، دل و جان سے قبول کریں. تو پہلا حق ایمان، اور دوسرا حق جو بیان کیا گیا وہ اطاعت ہے. اور اطاعت کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق عمل کرنا، آپ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کو بجا لانا، اور جن کاموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ان سے باز رہنا. یہ کرنے کے کام ہیں، یہ نہ کرنے کے کام ہیں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ فرض اور واجب ہے، یہ مباح اور جائز ہے. تو جائز کے اندر رہنا، فرائض واجبات کو انجام دینا، سنن مستحبات کی پابندی کی پوری کوشش کرنا، اور محرمات مکروہات سے پورا احتراز کرنا، اہتمام سے بچنا. تو دوسرا حق ہے اطاعت، اور تیسرا حق اتباع. اور اتباع کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضع قطع، آپ کا رہنا سہنا، آپ کی پسند، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا طور و طریق، آپ کا انداز، آپ کی سنتوں کو، آپ کے شمائل کو اپنانے کی کوشش کرنا، حتی الامکان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک ایک تفصیل کو سیکھ کر اس کو اپنانا، اس کو اپنی زندگی میں لانا، یہ اتباع یعنی اطاعت. تو جو کہا ہے اس کے مطابق عمل کرنا، اور اتباع اس سے ایک درجہ آگے ہے کہ خود معلوم کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، آپ کی پسند کیا تھی، آپ فلاں کام کیسے کرتے تھے، اور پھر اس کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا. ایک رات حضرت مولانا الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا گیا کہ وہ ٹہل رہے ہیں ایک خاص انداز سے، ایک قدم اٹھاتے ہیں پھر رکھتے ہیں، چل رہے ہیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. جو بانی تبلیغی جماعت ہیں، بہت بڑی تحریک اسلام اور مسلمانوں کو دین کی طرف واپس بلانے کے لیے انہوں نے چلائی ہے، جو پورے عالم میں پھر یہ کام پھیلا ہے، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے چچا. تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ رات کو چل رہے ہیں، تو کسی نے دیکھا تو پوچھا، حضرت آپ کیا کر رہے ہیں، رات کا وقت ہے، بزرگ ہیں، معمر، خاص انداز سے چل رہے ہیں، قدم उठाते हैं, फिर रखते हैं, फिर वापस इधर से इधर, इधर से इधर। तो कहा कि मैं मश्क कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अंदाज अहादीस में बयान किया गया है उस अंदाज को अपनाऊं। तो देखो, ये तो सारी उम्र की बात, हमारे हजरत मौलाना यूसुफ मुताला नवर अल्लाह मरकदहू, ये अखीर उम्र की बात है कि एक मरतबा अपने किसी खादिम को फ़ोन किया और जिक्र किया कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने भी और ख़ानदान के तमाम अफराद ने भी एक सा पानी से गुसल किया है। एक सा पानी से गुसल करना सुन्नत है, और एक सा जो है ये चंद लीटर होता है, एक मुद तो होता है तकरीबन 1.25 लीटर। तो एक मुद से वुजू करना सुन्नत है, और एक सा ये चंद किलो होता है, तो इतने से गुसल करना सुन्नत है। तो इसका एहतमाम, अब देखो अखीर उम्र तक हजरत का जब विसाल हुआ है तो 72-73 तकरीबन उम्र थी, तो अखीर उम्र तक इसका शौक और इसकी कोशिश के एक एक सुन्नत पर अमल हो, तो इत्तेबा का जज्बा हमारे अंदर पैदा हो। तो ये तीसरा हक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम इत्तेबा करें। और चौथा हक मोहब्बत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत होनी चाहिए, तो सहाबा किराम से हम ये चीज़ सीखें, तो इतनी मोहब्बत होनी चाहिए कि, और ये कामिल ईमान की निशानी है कि अपने वालिदैन और अपनी बीवी बच्चे, अपने भाई बहन, अपने दोस्त अहबाब और पूरी दुनिया की मोहब्बत एक तरफ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत एक तरफ। आप अगर दोनों चीज़ें, दोनों मोहब्बतें मीज़ान के दो पलड़ों में रखी जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ज़्यादा हो, उस तरफ का पलड़ा झुक जाए। और इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा ये होता है कि इंसान दुनिया में रहता है, उसके माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे, दोस्त अहबाब सब होते हैं, माल दौलत जो चीज़ें उस दुनिया में होती हैं सब उसके साथ। लेकिन जब दोनों चीज़ों में मुकाबला हो जाए कि या तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार करना है और आपकी रजामंदी के मुताबिक चलना है, आपकी तालीमात हिदायत के मुताबिक चलना है, या फिर मुखालफत करनी है माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे, दोस्त अहबाब, दुनिया को राजी रखने के लिए, तो इंसान किस तरफ जाता है? हदीस शरीफ में है, तो यहाँ इम्तिहान होता है। हदीस शरीफ में है कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुन अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नासि अजमाइन, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वसलाम, कि तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता यहाँ तक कि मैं उसको ज्यादा महबूब ना हो जाऊं उसके वालिद से, उसकी औलाद से और सारे लोगों से। यानी एक तरफ अपने वालिद को रखो, अपने वालिदैन को रखो, एक तरफ अपनी औलाद को रखो और सारे लोगों को, ये सारा एक तरफ, और दूसरी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हदीस में है कि तुम में से कोई मोमिन ही नहीं हो सकता। उलमा ने इसको कमाल ईमान पर महमूल किया, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि मोहब्बत और ईमान दोनों अलग नहीं हो सकते। और उलमा ने इसको तकसीम भी किया है कि एक है अकली मोहब्बत। अकली मोहब्बत यानी यानी आप बहुत सारे फैसले ऐसे करते हैं जिंदगी में जो अकल की बिना पर होते हैं। मिसाल के तौर पर सादी सी मिसाल कि अकलन आपको मालूम है कि फलां चीज मेरे लिए मुफीद नहीं है, तो आप उसको खाते नहीं हैं, तो एक तरह की दूरी उससे पैदा हो जाती है, और वो इस वजह से नहीं कि वो चीज़ मना है, बल्कि इसलिए कि आपको उससे परहेज करनी है अपनी सेहत के लिए। तो अकलन दूसरी चीज़ आपको महबूब हो जाती है, अगर आपके नफ्स पर नागवार भी है, लेकिन आप सोचते हैं कि ये मेरे लिए फ़ायदा मंद है, तो आहिस्ता आहिस्ता उससे तबीयत लग जाती है, तो ये अकली मोहब्बत है। लेकिन हकीकत ये है कि सिर्फ अकली मोहब्बत नहीं, बल्कि अल्लाह वाले जो कामिल होते हैं उनके दिल में, रग रग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क भरा हुआ होता है। वो सही माने में जो है सहाबाए किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम का जो नक्शे कदम है उस पर चलने वाले होते हैं। सहाबाए किराम का तो तकिया कलाम था, फदा का अबी व उम्मी, फदा का अबी व उम्मी, फदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। और फिर ये बात है कि मोहब्बत में तरक्की करने के लिए पहचान भी होनी चाहिए। ऐसे अजनबी से क्या मोहब्बत करेंगे जिसका कुछ मालूम नहीं, कुछ ना कुछ तो मालूम होना चाहिए। किसी के बारे में कुछ भी मालूम ना हो तो कैसे उससे मोहब्बत होगी। तो इसलिए और जिससे मोहब्बत होती है उसके बारे में मालूमात हासिल किए जाते हैं। सहाबा किराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे कैसे मोहब्बत करते थे उसके सैकड़ों नमूने हैं। उन्होंने अपना वतन भी कुर्बान किया, मुहाजिरीन ने क्या किया, अपना घर बार छोड़ दिया। यानी आप ऐसा कर सकते हैं कि इख्तियारी तौर पर कि अपना मकान छोड़ दो, अपनी जमीन छोड़ दो, अपनी बिजनेस छोड़ दो, क्यों, दीन के लिए। तो साहबा ने तो ऐसा किया है, उनकी जमीनें थी मक्का शरीफ में, उनकी तिजारतें थी, उनके मकान थे, और ये उन्होंने इख्तियारी तौर पर किया। मक्का शरीफ में कोई उन पर जोर नहीं था, सिर्फ अल्लाह रसूल की खुशनुदी के लिए कुर्बान कर दिया। और जो महाजरीन थे उन्होंने इस इतना, हालांकि मक्का मक्का है, उन्होंने जब छोड़ दिया अल्लाह के लिए तो फतेह मक्का के बाद भी उनको ये भी पसंद नहीं था कि मौत मक्का शरीफ में आए, इसलिए कि इस मुबारक सरजमीन को हज के लिए तो जाते, उमरा के लिए जाते, लेकिन वहां की मौत सहाबा मुहाजिरीन पसंद नहीं करते थे क्योंकि उन्होंने उस वतन को अल्लाह के लिए छोड़ा हुआ था। तो वतन छोड़ा और मार पिटाई बर्दाश्त की, गाली गलौच मुशरिकीन की बर्दाश्त की। इधर अंसार हैं तो उन्होंने इस्लाम के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए अपना घर बार जो है ना उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, अपने अपने अमला को खर्च किया और अपनी जानों को खतरे में डाला और मुशरिकीन से, मुखालिफीन से, दुश्मनों से जंग उन्होंने मोल ली। कि जंग गजवाए बदर क्यों हुआ और गजवाए उहद क्यों हुआ और गजवाए खंदक, अहजाब का गजवा क्यों हुआ और मुनाफिकीन की साजिशें, ये सब क्या और क्यों, इसीलिए कि अंसार ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। तो दिलो जान से उन्होंने साथ दिया, अपने आप को खतरे में डालकर साथ दिया और फिर बरकत हासिल करते थे, बरकत हासिल करते थे। बच्चों को, नव मौलूद बच्चों को ये तहनीक का जो तरीका है जिसको हम पंजाबी में कहते हैं गुड़ती, तो जब कोई नव मौलूद बच्चा पैदा होता है तो किसी अल्लाह वाले से खजूर वगैरह चबवा कर उस बच्चे के मुंह में डाला जाता है ताकि वो उन बुजुर्ग की लुआब जो है वो उस बच्चे के रेशे रेशे में, उसके खून में मिल जाए ताकि उसकी बरकत हासिल हो। तो ये सुन्नत साहबा की है कि वो अपने बच्चों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाते थे। अहादीस की कुतुब में इसका मुस्तकिल बयान है, बुखारी शरीफ में इसका बयान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मुंह में खजूर चबा कर रखते थे जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब होता और उस बच्चे के सर पर हाथ फेरते, उसके लिए बरकत की दुआ करते। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू, ये अलग मजमून है अहादीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के सर पे हाथ फेरते। तो जिन बच्चों के हाथ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन बच्चों के सर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हाथ फेरते उन बच्चों के सर से एक खास खुशबू निकलनी शुरू हो जाती थी और दूसरे बच्चों में वो बच्चे पहचाने जाते थे। पता चलता था कि ये बच्चा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से होकर आया है, उसके सर से खुशबू आती। हजरत वाइल एक सहाबी हैं, उनके बचपन में उनको खारिश की तकलीफ हो गई और उनके खानदान की औरतें, उनकी बीवियां मुख्तलिफ किस्म की खुशबू लगाती थीं लेकिन उनकी खुशबू हमेशा उनसे ज्यादा होती थी। तो उन्होंने पूछा अपने शोहर से कि क्या बात है, आपकी खुशबू, आप क्या लगाते हैं। उन्होंने किस्सा सुनाया कि मैं जब बच्चा था तो मुझे खारिश की तकलीफ हो गई तो मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे ऊपर अपना दस्त मुबारक फेरा तो खारिश से भी शिफा हो गई और उस वक़्त से मेरे बदन से नेचुरल एक खुशबू आती है। और इस तरह तो बहुत किस्से हैं अहादीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कोई मुबालगा आरई नहीं है कि लोगों ने अपनी तरफ से बातें बना ली हों, बाकायदा हदीस की कुतुब में ये मजामीन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से गुजरते थे वहां से खुशबू आती थी। और हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला ने रिवायत करते हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 साल खादिम रहे, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक इतना नरम था कि कोई रेशम मैंने इतना मोटा हो या बारीक, कोई रेशम इतना नरम नहीं देखा जितना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेली का, जितनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मुबारक, दस्ते मुबारक जितना नरम था, तो रेशम से ज्यादा नरम और मुश्क और अंबर से ज्यादा मुअत्तर। हजरत अनस बिन मालिक कह रहे हैं मुश्क और अंबर से ज्यादा मुअत्तर, इतना मुअत्तर। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ ठंडा, यानी उसकी एक ठंडक थी, और जिस जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ अपने हाथ में जिसको लेने की सआदत मिलती तो उस ठंडक को महसूस करता और याद भी रखता। एक मरतबा हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु, जो असहाबे सुफा में से हैं और उस जमाने में फकर का जमाना था, यानी जो मशहूर किस्सा है दूध का, कि हजरत अबू हुरैरा इंतहाई भूखे हैं और बहुत ज्यादा असर है भूख का, तो रास्ते में बैठे हुए हैं और हजरत अबू बकर सिद्दीक वहां से गुजर रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा ने उनसे कोई सलाम दुआ की, वो सलाम दुआ हो गई और हजरत बकर तशरीफ ले गए और हजरत उमर तशरीफ ले गए, वहां उस रास्ते से गुजरे, उनसे भी सलाम दुआ की, फिर आप ससम वहां से गुजरे और देखा कि अबू हुरैरा यहाँ रास्ते में बैठे हैं और भूख की तकलीफ से परेशान हैं, तो मुस्कुराए आप ससम के, चलो मेरे साथ चलो, और साथ ले गए। तो साथ ले गए तो घर में क्या है, एक प्याला है दूध का, छोटा सा प्याला था। आप ससम ने अबू हुरैरा से नहीं कहा कि पियो, कहा सबको बुलाओ असहाबे सुफा को। अब लगभग 70 आदमी है असहाबे सुफा, अबू हुरैरा को मालूम है कि ये दूध पिलाया तो जाएगा, मेरी बारी तो आखिर में आनी है, छोटा सा प्याला है, किसी को क्या मिलेगा इसमें से। लेकिन पिलाना शुरू किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुअज्जा जाहिर हुआ, सब ने पिया और दूध उसी तरह। फिर हजरत अबू हुरैरा की बारी आखिर में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर अबू हुरैरा से कहा कि अब तू और मैं, तो हजरत अबू हुरैरा को पीने का फरमाया, तो हजरत अबू हुरैरा ने पिया, अब प्याला खत्म ही नहीं हो रहा, कहा और पी, और पिया, अब प्याला खत्म नहीं हो रहा, कहा और पी, और पिया, अब प्याला खत्म नहीं हो रहा, कहा और पी, कहा अब या रसूल और मैं नहीं पी सकता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक में वो प्याला लिया और उसको अपने लब मुबारक से लगाकर उस दूध को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोश फरमाया। हिजरत की रात का किस्सा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सिद्दीक और साथ में रहबर भी हैं सुराका, तो 3-4 अफराद नफर की ये जमात है और हिजरत का सफर हो रहा है। तो रास्ते में एक खातून है उम्मे माबद, और उम्मे माबद ऐसी खातून है कि वो मशहूर थी अरबों में, तो ये बात थी ही कि वो मुसाफिरों की मेहमान नवाजी करते थे। तो उम्मे माबद ने देखा कि ये मुसाफिर आ रहे हैं, तो ये आए खैमे की तरफ और पूछा कुछ है, तो कहने लगी कि जो अबू माबद हैं, जो शोहर हैं, वो तो बकरियों को चरवाने गए हुए हैं और कुछ भी नहीं हमारे पास, इस वक्त तो हालात अच्छे नहीं है, बकरियां भी ज्यादा दूध नहीं दे रही, कुछ भी बचा हुआ नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि खैमे के किनारे में एक कमजोर किस्म की बकरी है, तो पूछा कि ये, कहा कि ये तो पीछे रह गई, ये तो इसीलिए खैमे में है, वो तो चरने के काबिल भी नहीं है। तो फरमाया कि मैं अगर इससे दूध निकालूं तो? कहा कि अगर निकलता हो तो निकाल लो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ दस्ते मुबारक उसके ऊपर फेरा बरकत के लिए और उसका दूध दोना शुरू किया, तो बर्तन भर गया, बर्तन, ये ऐसी बकरी जो लागर और कमजोर और जो दूध नहीं दे रही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक के मस से उसके थन दूध से भर गए और बर्तन भर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले सबको पिलाया जो मौजूद हैं, फिर दोबारा दूध निकाला, फिर खुद पिया, फिर दोबारा दूध निकाला और फिर उम्मे माबद के लिए छोड़ दिया कि ये तेरे और तेरे घर वालों के लिए। और शोहर वापस घर आते हैं तो पूछा ये दूध कहाँ से आया, तो बताया कि एक मुबारक शख्स यहाँ से गुजरे, और फिर वो मशहूर अंदाज से आप सरसम की का वसफ बयान किया, आप सरसम का खद व हाल, आप सरसम की शक्ल मुबारक और सूरत मुबारक और बोलने का अंदाज और आप सरसम के चलने का अंदाज उस उम्मे माबद ने बयान किया। बहरहाल मैं तो खुशबुओं का जिक्र कर रहा था, اور یہ مستقل ایک باب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق. حضرت انس بن مالک کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داروں میں سے محرموں میں سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وہاں دوپہر کو قیلولہ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے پسینہ آتا تھا, تو جو بچھونا ہے تو اس میں ٹپک ٹپک کر جو ہے پسینہ جمع ہو جاتا تھا. تو مختلف روایات ہیں, یہ واقعہ متعدد روایت میں بیان کیا گیا. ایک مرتبہ ام سلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں اور ام سلیم دیکھ رہی ہیں کہ میرے گھر میں اللہ کے رسول آرام فرما ہے اور پیشانی مبارک سے, بدن مبارک سے معطر خوشبودار پسینے کے قطرے ٹپک رہے ہیں. تو انہوں نے آہستہ آہستہ ان قطروں کو جمع کر کے, یہ حدیث میں مضمون ہے, یہ کتاب الزینت میں امام نسائی نے بیان کیا ہے اور علماء اور محدثین نے بھی اس کو بیان کیا ہے, یہ کوئی قصہ گڑا ہوا نہیں ہے, یہ احادیث میں بیان کیا گیا مستقل طور پر. تو حضرت ام سلیم کیا کر رہی ہیں, یہ قطرے جمع کر رہی ہیں اور ان کو ٹپکا کر شیشی میں ڈال رہی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے, وہ پوچھا یہ کیا کر رہی ہو, تو کہا یہ میں اپنی خوشبو میں ملا رہی ہوں, اس سے ہماری خوشبو اچھی ہو جاتی ہے. اور ایک روایت میں تو ہے کہ کہا کہ خوشبو جمع کر رہی ہیں, وہ کہا کہ یہ اپنے بچوں کے لیے برکت کے طور پر استعمال کر رہی ہوں, جمع کر رہی ہوں. تو یہ صحابہ کا عشق اور محبت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے نکلنے والا معطر پسینہ جس کی خوشبو مشک و عنبر سے بڑھ کر بشہادت صحابہ انس بن مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم اس کی شہادت دے رہے ہیں. آگے سنیے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ چلا, پھر وہ رہ گیا بیچ میں. جو اصل بات سنانی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ کی بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے اور پاس کچھ نہیں ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ایک شیشی میں خود بیٹی کے لیے ہدیہ کے طور پر, حضرت ابو ہریرہ کی بیٹی کے لیے ہدیہ کے طور پر ایک شیشی میں خود اپنے بدن سے پسینے کے قطرے ڈال کر پیش کیے کہ یہ لو لو بھائی. اس خوشبو کا اتنا چرچا ہوا, یعنی اس گھر سے اتنی خوشبو آتی تھی, اس دلہن نے وہ خوشبو لگائی تو سب سے بڑھیا خوشبو اس کی خوشبو, اور اس گھر میں اتنی خوشبو کہ وہ خوشبو والا گھرانہ کہلانے لگا, اس کا لقب پڑ گیا پورے مدینہ میں کہ خوشبو والا گھرانہ. اہل متطیبین, عربی میں طیب کہتے ہیں خوشبو کو, تو خوش عمدہ خوشبو والا گرانہ, یہ اس گرانے کا نام پڑ گیا. تو بات یہ ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا ہی نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے دل میں بسائیں. ہم نے کیا کیا, ہم نے ٹک ٹاک سے ہزاروں اپنی زندگیوں میں ویڈیو دیکھے, ہم نے یوٹیوب کے ویڈیو دیکھے, ہم نے فیس بک کے ویڈیو دیکھے, ہم نے فلاں انفلوئنسر کو دیکھا فلاں کو, ہم نے فلاں فیشن کو دیکھا, ہم نے فلاں طرز کو دیکھا, فلاں انداز کو دیکھا, فلاں طور و طریق کو دیکھا, اس کی طرف ہمارے دل مائل ہوئے اور ہمارے دل اور دماغ ان چیزوں سے بھر گئے, اور ہم نے جانا ہی نہیں, ہم نے سوچا ہی نہیں کہ یہ بھی ایک عالم ہے, یہ بھی ایک دنیا ہے جو اپنے دل میں بسانی چاہیے تھی, جو ہمیں اپنانی چاہیے تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہمارے اندر داخل ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا ذکر ہو رہا ہے, حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہی, میں جو مضامین بیان کر رہا ہوں میں پھر سے کہتا ہوں یہ سارے احادیث میں موجود ہیں, حوالے موجود ہیں, یہ کوئی من گھڑت باتیں نہیں ہیں, یہ مبالغہ آرائی نہیں ہے. جس طرح ساری احادیث سند کے ساتھ باب در باب درج ہیں, اسی طرح یہ مضامین بھی سنن اور احادیث کتب احادیث میں درج ہیں, شمائل کی کتابوں میں درج ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. اب دیکھو صحابہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کر رہے ہیں, تو جو اللہ تعالیٰ کا یہ نیچرل نظام ہے, فطرت तो जब इंसान किसी खूबसूरत चीज को समझाना चाहता है तो तशबीह देता है ना कि फलां चीज की तरह। तो नेचर में कौन सी चीज खूबसूरत है? कभी फूल से तशबीह दी जाती है, हमारे शुआरा अक्सर फूलों से तशबीह देते हैं, चमन से, फूल से, गुलिस्तान से, गुल से, फूल से तशबीह दी जाती है ना। अच्छी आवाज हो तो किसी परिंदे से तशबीह दी जाती है जी। तो जो अल्लाह ताला ने नेचुरल चीजें जो हैं हमारे आगे पीछे अल्लाह ताला की कुदरत के करिश्मे, तो उनमें अल्लाह ताला ने जो कुछ पैदा किया तो उसमें रोशनी और खूबसूरती की मिसाल देनी हो तो सूरज और चांद की मिसाल दी जाती है, माहो मेहर, आफताब व महताब, सूरज और चांद इनकी मिसाल दी जाती है। तो सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सूरज और चांद दोनों की मिसाल दी है। अरबी में जो 14वीं रात का चांद होता है, जो फुल मून होता है, उसको बदर कहते हैं, और जो पहली रात का चांद होता है उसको हिलाल कहते हैं। तो बदर का लफ्ज हदीस में कसरत से आया है आप सलम के लिए, और उसकी वजह है दो चीजें थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा ऐसा नहीं था जैसे बाज लोगों का चेहरा होता है कि लागर और समझिए कि गालें अंदर की तरफ हैं, ऐसा नहीं, बल्कि पुर गोश्त यानी सेहत की अलामत, और गोरा गोरा रंग जिसमें लाली हो, मुशरबुम बिल हमरा, और बाल सियाह, और दांत मोतियों की तरह और बिल्कुल तरतीब से, और मुंह कुशादा, और आंखें सफेद, और आंखों की स्याही बिल्कुल सियाह, और पलकें लंबी, और आंखें इस तरह जैसे सुरमा लगाया गया हो, मैं नेचुरली मुखहल गोया, अगरचे आप सुरमा भी लगाते थे, और बाल के सर के बाल और दाढ़ी के बाल घने, और अखीर उम्र तक आप के दाढ़ी में अखीर वफात से पहले कमोबेश कोई 15-17 बाल सफेद हुए, इससे ज्यादा नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर, उसकी उसकी तरफ सहाबा को तो नजर उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं होती थी, लेकिन जिन्होंने जी भर के देखने की हिम्मत की, चंद एक सहाबा, उन्होंने तौसीफ भी बयान की, और बाजों ने चांद के साथ तशबीह दी है, और बाजों ने सूरज के साथ, और सूरज के साथ तशबीह देने वालों में हजरत अबू हुरैरा भी हैं। और मैंने अर्ज किया कि चांद से तशबीह की दो वजह, एक तो चेहरा बहुत ज्यादा रोशन था यानी उससे नूर निकलता था, और जब आप सरसम गुफ्तगु के लिए मुंह खोलते तो मुंह से भी नूर जाहिर हो रहा होता था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे में कदरे गोलाई थी यानी लंबाई नहीं थी, चेहरा लॉन्ग नहीं था बल्कि जरा थोड़ा सा राउंड था। तो एक तो गोलाई थोड़ी सी और एक रोशनी, तो इसलिए चांद से तशबीह दी गई। और हजरत अबू हुरैरा ने तो सूरज से सिर्फ तशबीह नहीं दी बल्कि एक और बात की है, इस पर गौर करने की जरूरत है, कअन्न शम्स तजरी फी वजही, फरमाया कि ऐसा लगता था कि सूरज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहराए अनवर में दौड़ रहा है। क्या मतलब? कि शुआएं मचल रही हैं इधर इधर इधर। हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम अहले किताब से मुसलमान हुए तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के बारे में एक बात बयान की है कि जब मदीना शरीफ आप तशरीफ लाए हैं तो फलम्मा तबयन तो वजहहु अरफ तो अन्न वजहहु लैस बिवजहि कذاب, जब मैंने साफ क्लियरली पहली मरतबा आप का चेहरा अनवर देखा और उसकी जियारत की तो मेरे लिए ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई और मुझे पूरा और पक्का यकीन हो गया कि ये किसी जूते का चेहरा नहीं हो सकता। हमारे अकाबिर में कितने ऐसे लोग हैं कि उनके चेहरों को देख कर लोग मुसलमान हुए हैं, तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर का क्या हाल होगा, जो सईदुल कौनैन हैं हजरत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, जो जलीलुल कदर मुहद्दिस गुजरे हैं करीब जमाने में, तो वो एक सफर में हैं और एक ट्रेन स्टेशन से गुजरते हैं, एक शख्स हिंदू से मुसलमान हो जाता है सिर्फ मौलाना अनवर शाह कश्मीरी का चेहरा देखकर, एक अजनबी शख्स का चेहरा देखकर कभी नहीं देखा उनको इससे पहले। बड़े किस्से हैं अकाबिर के चेहरों के, बड़े अजीब व गरीब किस्से हैं। एक मरतबा हजरत शेख जकरिया रहमतुल्लाह अलैह सफर में हैं, प्यास लगी, एक दुकान में गए, वहां कोई सिंह सरदार जी दुकान के ऊपर बैठा हुआ है और हजरत ने उससे बोतल खरीदने की कोशिश की कि कुछ ठंडा पिए, कुछ मशरूब पिए, और उसने इनकार कर दिया कि नहीं नहीं देता आपको। हजरत शेख को खफगी सी हुई कि क्या मसला है, गर्मी है, शरबत लेना है। वहां से चले गए तो पता चला कि उसके पास वो बोतलें मशरूब की नहीं थी बल्कि शराब की थी, और उसने हजरत शेख रहमतुल्लाह अली का चेहरा देखा और पता चला कि ये ऐसे बुजुर्गवार इंसान हैं, इनको ये चीज़ नहीं पेश की जा सकती। और हया में, शर्म में, उसने ये भी नहीं बताया कि क्या बेच रहा हूँ, लेकिन बस नहीं नहीं बेचता, दिया नहीं। तो बुजुर्गों के चेहरों के किस्से, तो ये सब एक समझिए कि अदना सी अदना सी अदना सी अदना सी झलक है कि हुजूर अली सलातु वसलाम के खादिमों के खादिमों के खादिमों के खादिम जो हैं उनके चेहरे देखकर लोग मुसलमान हो रहे हैं। तो जो सरकारे दो आलम सईदुल कौनैन फखरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, आपके चेहरे का क्या हाल होगा? तो कहने का मकसद ये है कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर ना की, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान हासिल करने की कोशिश ही ना की। उसका नतीजा ये हुआ कि हमने अपने दिलों को, अपने दिमागों को और बहुत सारी चीज़ों से भर दिया, लेकिन जिन चीज़ों से, जिन मोहब्बतों से, जिन तसव्वुरात से भरना चाहिए था उनसे नहीं भरा। तो इसकी हम कोशिश करें और इसका एहतमाम करें। इसका एक तरीका यह है कि सीरत और शमाइल की किताबों का मुतालाआ किया जाए। शमाइल तिर्मिजी का की उर्दू शरह खसाइल नबूवी हजरत शेख ने लिखी है, उसको हासिल कीजिए, उसको पढ़िए, इंग्लिश में भी मैसर है। सीरत मुस्तफ़ा मौलाना इदीस कांदलवी की, इसी तरह काजी साहब की रहमतुल लिल आलमीन, रहमतुल लिल आलमीन जखीम जिल्द है, बेहतरीन, उसका मुताला कीजिए। और इसी तरीके पर नातें सुनिए, और नातें ऐसी जो बाशरा लोग पढ़ रहे हों और जिसमें साज ना हो, गाने ना हो, यानी म्यूजिक ना हो, और जिसमें इख्तलात ना हो। तो सुनिए, हमारी इस मस्जिद में भी इस शनिचर को नात का प्रोग्राम है, असर से, ये मगरिब से ईशा तक आप उसमें शिरकत कर सकते हैं, या घर से सुन सकते हैं, या मस्जिद में तशरीफ ला सकते हैं। बहरहाल ये मोहब्बत वाला बाब जो है इससे इंसान बहुत तरक्की करता है। और जैसे कि मैंने पिछली मजलिस में अर्ज किया था, जब मोहब्बत हो जाए तो फिर इताअत भी आसान हो जाती है, इत्तिबा भी आसान हो जाती है, ईमान में भी पुख्तगी हो जाती है। अल्लाह सुबहान व तआला हमें अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह इस मजमून को अगली मजलिस में आगे बढ़ाएंगे, अभी इसी पर इक्तफा करते हैं। अल्लाह ताला हमारी जिंदगियों को सुन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मुअत्तर फरमाए। व आखिर दावाना अलहमदुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन وصلى الله على النبي الكريم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين